नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। और बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को 18 अगस्त तक चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेज प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। एनटीए ने बताया कि शेष तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर भी भरोसा करें। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल्द ही आधुनिक ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया। इस दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत बैठक कर पूरी प्रणाली की रूपरेखा पर चर्चा की।
प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत कैबिनेट की पूरी प्रक्रिया कागज रहित, सुरक्षित, तेज और पारदर्शी होगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रियाएं जैसे नोट्स, एजेंडा, संलग्न दस्तावेज, निर्णय और बैठक की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी। इससे निर्णय लेने की गति बढ़ेगी, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और विभागों के बीच समन्वय भी अधिक प्रभावी बनेगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे सरकारी प्रक्रियाएं सरल हो सके, साथ ही प्रिंटिंग और दस्तावेजों के रखरखाव पर होने वाला खर्च भी कम होगा तथा कागजों पर निर्भरता लगभग समाप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना नहीं बल्कि शासन को अधिक तेज, पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में मात्र 13 दिनों का था। इसके बाद उन्होंने 1998 से 1999 तक करीब 11 महीने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1999 से 2004 तक उन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण, समावेशी नेतृत्व और राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनकी वचनबद्धता भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिग्गज थे जिनका व्यक्तित्व देशभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों, संवेदनशीलता और असाधारण वाक्पटुता का अनूठा संगम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य बोध और जनसेवा की अखंड प्रेरणा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सुशासन के मजबूत नींव से लेकर पोखरण से साहसिक निर्णय तक उनका प्रत्येक कदम राष्ट्रहित और भारत के सामर्थ्य को समर्पित रहा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज तिमारपुर से 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राजधानी में कैंटीनों की संख्या 100 हो गई। इस योजना के अंतर्गत करीब 1,00,000 श्रमिकों, जरूरतमंदों, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रतिदिन केवल 5 रूपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि इन कैंटीनों का शुभारंभ अत्यंत सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों और दिल्ली में रोजगार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों को सस्ता तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
ये अन्न योजना दिल्ली राजधानी का महत्वपूर्ण योजना है। काम करने वाले को कम से कम भोजन मिले, वो भोजन भी 5 रूपये में। 5 रूपये में क्या आते, कुछ नहीं आते। सरकार अपना पैसा कच्चा कर रहे और ये महत्वपूर्ण योजना चला रहे। ये अटल कैंटीन दिल्ली के चुने हुए जे क्लस्टर श्रमिक कॉलोनी के आसपास खोले गया है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक मील्स इन अटल कैंटीन से वितरित किए जाते हैं। अब तक 75 अटल कैंटीन से 95,00,000 वितरित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 100 अटल कैंटीन का संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्योदय और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाने वाला है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, और हमने संकल्प लिया कि 100 अटल कैंटीन हम पूरी में खोलेंगे, जहां पे रोजाना 1,000 लोगों को खाना दिया जाएगा। 100 कैंटीन के माध्यम से रोजाना 1,00,000 लोग भोजन करेंगे, हर पेट भोजन 5 रूपये में। ये वो हमारा संकल्प था, जिसके माध्यम से दिल्ली की जनता में एक हमारा संवेदनशील जो विचार है वो पहुँचना चाहिए था।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम DTC बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की मौजूदा व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के अंतर्गत बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को 1 सितंबर से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों और रक्षाबंधन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि महिला यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। निगम के अनुसार अब तक 18,13,866 से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। साथ ही निगम ने महिलाओं से समय सीमा से पहले स्मार्ट कार्ड बनवाने की अपील की। दिल्ली जल बोर्ड ने लंबित पानी के बिलों पर 100% विलंबित भुगतान अधिभार माफ करने की सुविधा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस निर्णय के अंतर्गत उपभोक्ताओं को केवल मूल बकाया राशि जमा करनी होगी और पूरा LPSC माफ कर दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि जिन परिवारों पर पुराने पानी के बिल बकाया हैं, उनके लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके अलावा उन्होंने शहरवासियों से लंबित पानी के बिलों का भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज अशोक रोड स्थित आदित्य सदन NDMC हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत लगातार 37वें रविवार को पौधारोपण किया। श्री चहल ने कहा कि केवल पौधा लगाना ही नहीं, बल्कि उसकी नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह में अपनी दिनचर्या का एक वीडियो साझा किया है। इसमें प्रधानमंत्री 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करने के लिए लाल किले जाने से पहले अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर गायों और मोरों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होगी। पूर्व विश्व विजेता और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में ओलंपिक की मेजबानी के विजन का समर्थन किया। संवाददाताओं से बात करते हुए सिंधु ने बताया कि भारत के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं और उन्हें और बेहतर बनाने पर बल दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय में से रह रहे आइवरी कोस्ट के एक नागरिक को डाबरी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2020 में विदेशी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज था और वे मामले की सुनवाई से बच रहा था, जबकि अदालत द्वारा आरोपी को वर्ष 2024 से भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। सरकार ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान को लेकर जांच आयोग के गठन के बारे में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पीआईबी ने नागरिकों से सतर्क रहने और सत्यापित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं विभाग ने बताया है कि कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया। सरकार ने डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पेपर बेस्ड पिंक टिकट की व्यवस्था को 31 अगस्त तक बढ़ाया। और बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।